अभिमन्यु से फोन पर बात करने के बाद नंदिनी ने इप्सिता का फोन टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद जीजू इप्सिता का ख्याल रखेंगे। ये बात नंदिनी के दिल की सच्ची बात थी। इतने में इप्सिता बाथरूम से बाहर आई और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गई। नंदिनी ने पूछा, ईशु कल मैं वापस जा रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने चलोगी ना? ये सुनकर इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चलूंगी, ये पूछने वाली बात भी है क्या? नंदिनी ने तुरंत कहा, अरे मैं तो बस कन्फर्म कर रही थी, मुझे लगा तू इतनी परेशान है और मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही तो शायद तू मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी ना आए। इप्सिता ने नंदिनी की बात सुनकर उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, हम तुझसे नाराज क्यों होंगे, और इसमें तेरी कोई गलती भी नहीं है, हम तुझे छोड़ने जरूर आएंगे, और हम तो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम तू अच्छे से अपनी तैयारी कर लेना। इतना बोलकर इप्सिता उदास हो गई। नंदिनी ने उसे बगल से गले लगाते हुए कहा, यार इप्सिता मुझे बहुत बुरा लग रहा है, काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती, आंटी और अंकल को मना पाती, लेकिन जब अंकल आंटी तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरी बात कहाँ सुनेंगे। नंदिनी की बातें सुनकर इप्सिता ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी को मनाने की, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। इतना कहकर इप्सिता और भी परेशान हो गई। नंदिनी ने इप्सिता को दिलासा देते हुए कहा, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है बल्कि बहुत अच्छी है, और देखना अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों हमेशा की तरह साथ मिलकर एग्जाम क्लियर करेंगे। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने रूफेपन से हंसते हुए कहा, झूठी उम्मीदें लगाना छोड़ दिया है मैंने अब नंदिनी, तुम भी मुझे दिलासा देने के लिए इस तरह की बातें मत बोलो। नंदिनी इप्सिता की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नंदिनी ने बिना कुछ बोले इप्सिता को गले लगा लिया। इप्सिता बहुत परेशान थी और नंदिनी उसे गले लगाए लेटी हुई थी। उसने इप्सिता के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखो कल मैं जा रही हूँ और तुम मुझसे रोज बात करोगी, ठीक है, और इस तरह परेशान मत रहना वरना मुझे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारी ही टेंशन होती रहेगी। इप्सिता नंदिनी की बातें सुन रही थी लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। नंदिनी ने इप्सिता का चेहरा अपनी ओर करा। उसने उसका चेहरा घुमाते हुए कहा, ईशु तुम मेरी बात सुन रही हो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मुझसे रोज बात करोगी या नहीं? इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखकर उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बस तुम और उदय भाई ही हो जो मुझे इतना प्यार करते हो, वरना मॉम डैड को तो सच में मेरी कोई परवाह नहीं है। उदय भाई सही कह रहे थे, मुझे इस शादी के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये शर्त रखनी चाहिए थी कि मेरे एग्जाम होने के बाद ही मैं शादी करूंगी। मैंने इमोशनल होकर मम्मी पापा के बारे में सोचकर बेवकूफ़ी भरा फैसला ले लिया जो मुझ पर ही उल्टा पड़ गया है, और कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। ये बात बोलते हुए इप्सिता का चेहरा एकदम रुआंसा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और नंदिनी भी खुद को लाचार महसूस कर रही थी क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद नहीं कर पा रही थी जबकि वो उसकी मदद करना चाहती थी। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते ईशु, लेकिन अब मुझे उम्मीद है तेरी आने वाली जिंदगी अच्छी होगी। नंदिनी इतना बोलकर इप्सिता की तरफ देखने लगी। इप्सिता ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, अब हम अपनी जिंदगी से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, ना उम्मीदें होंगी और ना ही हम दुखी होंगे। इप्सिता के मुंह से ये बात सुनकर नंदिनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसे नहीं कहते हैं, देखना तेरी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी, अभिमन्यु जीजू तेरा हर सपना पूरा करेंगे। इप्सिता ने नंदिनी के इस बात को अनसुना कर दिया और आंखें बंद करते हुए कहा, नंदिनी हमें नींद आ रही है। नंदिनी ने इप्सिता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो ठीक है सो जाओ फिर, हम भी अपनी पैकिंग करके सो जाएंगे। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। नंदिनी भी थोड़ी बहुत पैकिंग करके सोने ही वाली थी कि उसे प्यास लगी। उसने पानी का ग्लास उठाया लेकिन देखा कि जग में पानी नहीं था, तो नंदिनी जग उठाकर कमरे से बाहर निकली और सीधे किचन की ओर पानी लेने गई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। नंदिनी फ्रिज की ओर बढ़ रही थी, फिर से उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदिनी आगे आई और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने फ्रिज बंद किया वहां कुछ गिरने की आवाज़ आई। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई खड़ा था। किचन में बहुत अंधेरा था इसलिए नंदिनी उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई, उसे सिर्फ एक काली परछाई दिखी। वो घबरा कर चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। किचन में लाइट नहीं जल रही थी, वो ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन करीब आने पर नंदिनी ने उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उदय था। उदय ने नंदिनी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था और उसे चुप रहने का इशारा किया। वो उसके कान के पास गया। नंदिनी उदय को हैरत से देख रही थी। उदय नंदिनी के कान में कुछ बोलने वाला था कि उसकी नाक नंदिनी के गर्दन पर छू गई और नंदिनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। तभी उदय ने गहरी आवाज में कहा, कृपया नंदिनी चिल्लाइएगा मत वरना सब लोग जाग जाएंगे। नंदिनी ने धीरे से उदय का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए थोड़ी हैरान होते हुए कहा,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इतनी रात में? उदय नंदिनी की आंखों में देख रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उदय नंदिनी के इतने करीब था कि वो अपने चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। जब उदय ने जवाब नहीं दिया तो नंदिनी ने खुद ही समझाते हुए कहा, वो हम तो बस पानी लेने आए थे, लेकिन आप। नंदिनी की बात सुनकर उदय दो कदम पीछे हटा। वो उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में बोला, नंदिनी आप कल वापस जा रही हैं ना? नंदिनी ने उदय की प्यार भरी नजरें महसूस की और उसे अच्छा लगा। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ मुझे लगा आपको तो पता होगा आप इस तरह से पूछ रहे हैं। उदय ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिब्बे को नंदिनी के सामने करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, हम बस कंफर्म कर रहे थे क्योंकि कल हमारी ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमें सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, इसलिए हम आपको सी ऑफ करने नहीं आ पाएंगे। और इतने दिन आप यहाँ थी तो हम आपको अच्छे से अलविदा कहना चाहते थे, लेकिन मीटिंग की वजह से। ये बोलते हुए वो काफी उदास लग रहा था। उदय बोल ही रहा था कि नंदिनी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, इट्स ओके, और काम तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? हमें नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। नंदिनी ने उस गिफ्ट डिब्बे की तरफ देखते हुए कहा। नंदिनी की नजर गिफ्ट डिब्बे पर पड़ते ही उदय बोला, वो असल में ईशु इस समय बहुत परेशान है तो वो आपको रिटर्न गिफ्ट देना भूल जाएगी, इसलिए हमने आपके लिए ये छोटा सा तोहफा खरीदा है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। और वैसे भी अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना? नंदिनी ने ये बात सुनकर उदय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, आप इप्सिता के भाई हैं और इतने दिनों में हम दोस्त तो बन ही गए हैं, लेकिन उसके लिए इस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी। उदय ने उस गिफ्ट की तरफ देखते हुए कहा, हम बड़े प्यार से आपके लिए लेकर आए थे, कृपया इसे ले लीजिए। उदय ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की तो नंदिनी ने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस गिफ्ट को लेते हुए कहा, ओके थैंक यू सो मच। जैसे ही नंदिनी ने वो गिफ्ट लिया, उदय के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई।
नंदिनी ने जग में पानी लिया और किचन से बाहर जाने लगी। उदय वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। नंदिनी किचन से बाहर निकलने से पहले एक बार पीछे मुड़ी और उदय की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उदय उसकी मुस्कान देखकर खुश हो गया और अपने कमरे में चला गया। नंदिनी जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने उस गिफ्ट डिब्बे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, इप्सिता के भाई ने हमारे लिए इतना सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। नंदिनी इतना बोलकर उस डिब्बे की तरफ देखने लगी और उदय के बारे में ही सोच रही थी। उदय का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ से वापस जाने पर उसे कोई गिफ्ट भी देगा। उसे नहीं लगा था कि वो किसी के लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई उसके बारे में सोचेगा, इप्सिता को छोड़कर।